Ono generalno nemam da se gledam, jer nemam što da kjer, tako što gledam na termine za smešću i gledam. Svi će i da nema na ovom stadu, da nije nema, da li je sve jedno, pa kada ne, onda da li se gledam. Ja si već na gledam, probali te jedan, da se dvije njega da, da je živa, da je gorba, da onda. I kašnari, i kašnari. Bola je tamo. Okay, so अगर कोई व्यक्ति आपको कहता है कि मैं भगवान का अवतार हूं या मैं ही भगवान हूं, तो आप जनरली उनको इस चैप्टर के आधार पर आप क्या कहोगे? अभी हमने जो श्लोक पढ़े हैं उसके आधार पर आप उनको क्या कहोगे? मोबाइल चार्जिंग
हम उसको बोल सकते हैं कि अपना विराट स्वरूप दिखाओ, गोवर्धन एक्चुअली पे उठा के दिखाओ, तो हम आपको जाने के
अगर वो कहते हैं कि मैं विराट स्वरूप दिखा सकता हूँ, लेकिन उसको देखने के लिए आपको आपके पास आंखें नहीं है, उसको दिव्य चक्षु से ही देखा जा सकता है, तो आप क्या कहोगे फिर?
हाँ
अब क्या कहेंगे? अगर कोई कहता है कि मैं भगवान हूँ और आप उनको कहते हो अगर आप भगवान हो तो विराट स्वरूप दिखाओ, अगर वो कहते कि उसको देखने के लिए तो दिव्य चक्षु की आवश्यकता है,
तो शास्त्र में जो भी भगवान होते हैं उसका तो शास्त्र में उसका प्रमाण होता है कि भगवान ये है। दूसरा भगवान की व्याख्या भी है, पराशर मुनि जो है उन्होंने कहा है सारे
ऐश्वर्य
जो है इनके पास, वही भगवान है।
वो सब कुछ है हमारे पास, वो सब कुछ है, लेकिन उसको देखने के लिए तुम्हें आप दिव्य चक्षु की आवश्यकता है,
तो हमको दिव्य चक्षु देना पड़ेगा।
हाँ, तो दिव्य चक्षु दे सकते हैं, दिव्य चक्षु वो देने को अगर वो तैयार है कि मैं दिव्य चक्षु भी दे सकता हूँ, लेकिन पहले अर्जुन की तरह मुझे शरणागत हो जाओ।
मतलब आप ये बोलते हैं कि वो गोवर्धन पर्वत जैसा कोई भी ऐसा चमत्कारिक कार्य जो सामान्य आदमी नहीं कर सकता, जैसे जो जो भगवान ने किया गोवर्धन पर्वत को उठाया था, ज्वालामुखी को अपने मुंह में डाला, ये सब भी अगर वो कर सकते हैं।
हाँ, वो सारी बात अलग है, अभी तो हम केवल विश्व रूप की बात ही कर रहे हैं, विराट रूप की ही बात कर रहे हैं। अगर विराट रूप जो है उसके लिए वो बोलते हैं कि आपको दिव्य चक्षु मैं दे सकता हूँ अगर तुम अर्जुन की तरह मुझे पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ,
फिर भी हम नहीं हो सकते।
नहीं हो सकते मीन्स हम शरणागत नहीं हो सकते,
क्योंकि हम जानते हैं कि कृष्ण ही भगवान है, तो फिर दूसरे को हम क्यों हो?
नहीं, लेकिन वो कहते हैं मैं भी भगवान हूँ।
ऐसा तो कई देवी देवता है, फिर भी हम केवल कृष्ण को ही सरेंडर हो रहे हैं। जो
ठीक है, अब हम एक छोटा सा एक्सरसाइज कर सकते हैं। टेक्स्ट नंबर 31 में जब अर्जुन ने देखा भगवान का ये विराट रूप, तो वो बड़ा विह्वल हो गया और हाँ कि मैं आपके विषय में जानना चाहता हूँ, आप कौन है? यद्यपि वो तो जानते कृष्ण का विराट रूप है, लेकिन जब उन्होंने देखा तब तो वो पूरा आश्चर्यचकित हो गए, और तब तो उनको वो पहचान नहीं पाए कि ये है, इतना कौन है, ये इतना विशाल और जैसे आपको पिछली बार हमने आपको बताया था कि विराट रूप 10 दिशाओं में 10 दिशा आपके आजू बाजू सभी दिशाएं ऊपर भी और नीचे भी 10 दिशाओं में और कुछ नहीं दिखता था भगवान के रूप के अलावा। तो ये विराट रूप को देख करके अर्जुन इतना आश्चर्यचकित हो गए कि उनको कहा भय भी लगा उनको। तो उन्होंने कहा कि आप कौन है और आपका उद्देश्य क्या है, आपका मिशन क्या है, क्या करना चाहते हो आप, आपका स्वरूप का कोई विशेष कारण होना चाहिए। तो फिर भगवान उनको उत्तर देते 32 में, बताइए पढ़िए।
भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे सिवा पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे।
तब यहाँ पर भगवान स्पष्ट रूप से बताते हैं कि टाइम मैं काल हूँ, काल सब कुछ खत्म कर दूंगा। पांडवों को छोड़ करके जितने भी यहाँ पर उपस्थित है सबकी मृत्यु हो जाएगी, इसको बंद कर दूंगी, फैन ऑफ हो गया। सभी मर जाएंगे। आई हैव कम हियर टू डिस्ट्रॉय ऑल पीपल। मैं सबको एक्चुअली देखा जाए तो महाभारत में करोड़ों लोग एक साथ इकट्ठे हुए थे और 5 पांडव को छोड़ करके दोनों ही सेना के सभी मारे गए थे, कोई बचा नहीं, सैनिक भी नहीं बचे, दोनों साइड की सेना समाप्त हो गई, दोनों साइड के योद्धा समाप्त हो गए, 5 पांडव ही बचे। 5 पांडवों के अपने पुत्र भी नष्ट हो गए, 5 पांडवों के यहां तक कि उनका सेनापति था धृष्टद्युम्न वो भी नष्ट हो गया था, कुरुक्षेत्र में कोई बचा नहीं, बाद में सब खत्म हो गए। सो ये भगवान का ये रूप है, उसका नाम है काल रूप। और काल रूप के विषय में प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, द लॉर्ड इज सेइंग दैट इवन इफ अर्जुन डिड नॉट फाइट एवरी वन ऑफ देम वुड बी डिस्ट्रॉयड, फॉर दैट वॉज हिज प्लान। इफ अर्जुन स्टॉप फाइटिंग they would die another way. Death could not be checked even if he did not fight. In fact, they were already dead. Arjun अगर युद्ध करे तो वो क्रेडिट लेगा और वो सब मरेंगे, और अर्जुन युद्ध नहीं करेगा तभी भगवान उसको खत्म करने वाले हैं सबको। तो they are already dead, तो बस अभी उनको केवल मारने का काम बाकी सब मरे हुए ही है। जिस दिन अर्जुन का सामने अर्जुन के ऑपोजिट चले गए तभी उनकी मृत्यु घोषित हो गई थी, जब उन लोगों ने भगवान के सामने की सेना में युद्ध करने का निश्चय किया उसी समय उनकी मृत्यु का घोषणा हो गया था। सो अर्जुन, लेकिन अर्जुन क्षत्रिय है और क्षत्रिय सबको मार भी सकते हैं और अर्जुन के सामने युद्ध है, तो अर्जुन भगवान ने सारी अपॉर्चुनिटीज का यूज करना चाहते हैं और इसलिए अर्जुन को अपना कर्तव्य कर्म करने को कह रहे हैं। सो इस तरह से अर्जुन को कहा जा रहा है यहाँ पर कि तुम युद्ध करो और इन सबको खत्म करो, तुम नहीं करोगे तो मैं कर दूंगा, मैं नहीं करूंगा तो कोई और करेगा, मैं किसी और को बोल दूंगा कि इस सबको खत्म कर दो। अर्जुन को एम्पावर किया था भगवान ने तो युद्ध जीत गया, अर्जुन मना कर देते तो भगवान भीम को बोल देते तुम मार दो सबको, भीम अगर मना करता युधिष्ठिर को बोल देते तुम मार दो सबको, तुम्हें शक्ति देता हूँ, खत्म करो सबको। तो ऐसा कहीं नहीं है कि अर्जुन है इसलिए भगवान युद्ध जीता पाए, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान बोल रहे कि काल के रूप में तो मैं सब कुछ नष्ट करने के लिए ही तो इधर आया हूँ और यहाँ पर सब कुछ नष्ट करके ही जाऊंगा, ये भगवान का अपना वचन है। तो लेकिन आगे कहते हैं कि अर्जुन तुम मेरा निमित्त बनो, ऐसा मेरा इच्छा है, ये है भगवान का इच्छा। पढ़िए आगे।
लड़ने के लिए तैयार हो, अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो, ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं और हे सदेशाची तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते
हो। yes. अब भगवान स्पष्ट रूप से बता दे अर्जुन तुम्हें ये था चिंता कि तुम जीतोगे हारोगे, अब तुम जीतने वाले हो ये तुम्हें मैंने पहले से बता दिया, तुम जीतने ही वाले हो और ये सब तो मेरे द्वारा पहले ही मरे हुए हैं और तुम्हें राज्य प्राप्त होगा इसका भी मैं अभी से तुम्हें बता देता हूँ। तो और तुम सव्यसाची हो, सव्यसाची का एक अर्थ ये है कि अर्जुन अपने लेफ्ट हैंड से भी बाण चला सकता था और राइट हैंड से भी बाण चला सकता, दोनों में से कोई भी हाथ, ऐसा नहीं कि अगर इधर कोई शत्रु आ गया तो इस हाथ से बाण छोड़ दिया, इधर कोई शत्रु आ जाए इस हाथ से बाण छोड़ दिया, सबके पास ऐसा सुविधा नहीं था। अर्जुन के पास ऐसा था, वो इतना शूरवीर था कि उसके पास ये पूर्व आयोजित युद्ध में केवल निमित्त बनना था उसको। अर्जुन के विषय में भगवान ये चाहते हैं कि प्रपद श्रीमद भागवत में कहीं जगह लिखे हैं कि ये मास वॉर जो होते हैं, बड़े बड़े युद्ध, विशाल युद्ध, ये सारे युद्ध जो है वो भगवान की योजना से होता है। कई लोग इसको एस्ट्रोलॉजी बीजों घुसाते हैं, एस्ट्रोलॉजी अभी अभी किसी का फोन आया था हम लोग एस्ट्रोलॉजी के बीच में घुसाते हैं एस्ट्रोलॉजी, अरे भाई तब माया दक्षिण प्रकृति का क्या अर्थ हुआ फिर, अभी एस्ट्रोलॉजी सब कुछ है तो फिर भगवान तो अपनी दुकान बंद कर देनी पड़े, है ना एस्ट्रोलॉजी तो, लेकिन एस्ट्रोलॉजी सब कुछ नहीं है। भगवान जो है वो कई बार ऐसे महान महान विनाश करवाते हैं, जैसे अभी कुछ समय पहले केदारनाथ में हुआ था, हजारों लोग मर गए होंगे, अभी बीच में रिसेंट कौन सा हुआ, उड़ीसा राइट,
हाँ
तो कितने लोग मरते हैं, ये तो रेगुलर हो गया है ना, अमेरिका में तो हर आए दिन कोई ना कोई वोल्केनो फटता है या फिर साइक्लोन, या आपका फ्लोरिडा तो एकदम त्रस्त है पूरी तरह से, हर दो महीने में एक वो साइक्लोन आ जाता है उधर। तो इस तरह से बड़े बड़े युद्ध जो है वो भगवान के द्वारा, बड़े बड़े जो विनाश है वो भगवान के द्वारा तय किए जाते हैं। तो दुर्योधन आदि सभी जो है उन सबको भगवान ने मारने का निश्चय कर लिया, लेकिन अर्जुन को क्रेडिट देना चाहते हैं। ये भगवान का एक अपना स्वभाव है कि हर एक कार्य का क्रेडिट वो अपने भक्त को देना चाहते हैं, यद्यपि वो खुद कर सकते हैं लेकिन वो बच्चे को देते हैं, अपने भक्त को देते हैं। ये समझ लो कि पिता खुद भी कर सकता है लेकिन अपने बच्चों के हाथ करवाता है, अब बच्चे के हाथ करवाएगा और बच्चों को कहेगा अरे बाबा तुम इतना सब कर सकते हो, तुमने इतना सब कर दिया, यद्यपि वो तो पिता के द्वारा शक्ति प्राप्त हुई थी, लेकिन अगर प्रभुपाद कृष्ण चाहते तो ये सारे विश्व में प्रचार तो हो ही सकता है ना, उनके लिए क्या असंभव है, लेकिन वो क्रेडिट प्रभुपाद को देना चाहते थे कि तुम ये कार्य करो। और आज संसार में इस महान प्रचार के पीछे लोग भगवान को इतना स्मरण करते हैं कि नहीं, लेकिन उसका मुख्य श्रेय प्रभुपाद को ही जाता है क्योंकि यही भगवान की इच्छा है, भगवान क्रेडिट देना चाहते थे प्रभुपाद को, तो भगवान अपने कार्य में कभी विफल नहीं होते, तो उनको कह दिया। तो कोई भी सेवा कोई भी प्रचार करते हैं भक्त तो हमेशा यही सोचना चाहिए कि मैं तो केवल निमित्त हूं, ये बहुत बड़ी फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग या फिर समझ शक्ति की आवश्यकता है। भक्त अगर छोटा सेवा भी करता है तभी भी उसको बड़ा अभिमान हो जाता है, देखा मैंने इनको भक्त बनाया, देखा मेरे कारण ये लोग कृष्ण भक्त में मिले, देखा मैंने ये कार्य कर दिया, देखा मैंने भगवान को कितना अच्छा श्रृंगार किया है। हर एक चीज के लिए, जैसे देखा मैंने कितना अच्छा रसोई बनाया। कोई भी सेवा करेगा तो उसके उसका जो श्रेय है वो भगवान अगर आपको देते हैं तो उचित है, लेकिन अगर आप खुद उसको लेना चाहते हो उसका क्रेडिट, तो फिर आप अहंकार से ग्रस्त हो जाते हो, क्योंकि कृष्ण शक्ति बिना तार नहीं प्रवर्तन, भगवान की शक्ति के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना हम हमारे हाथ पांव हिला सकते, ना बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। कई बार हम कहते हैं कि अंत में तो भगवान जो इच्छा करते हैं वही होता है, भगवान का जो इच्छा वही पूर्ण होता है, इसमें इंद्र चंद्र वरुण नक्षत्र इत्यादि कोई कुछ नहीं कर सकता, कृष्ण की इच्छा के सामने कहीं कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए भगवान पूर्ण करता है और हम उनके केवल निमित्त मात्र हैं। भगवान मुझे निमित्त, वो निमित्त बनने का सौभाग्य आपको प्राप्त हो रहा है, बस उस सौभाग्य से आप संतुष्ट होने का प्रयास कीजिए, वही बहुत बड़ी बात है सौभाग्य कि भगवान आपको निमित्त बनाए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि भगवान आपको निमित्त बनाए। प्रभुपाद यहाँ पर कई जगह लिखे हैं, डिवोटीज लाइक ब्रह्मा एंड अर्जुना डू नॉट डू एनीथिंग ऑन देयर ओन अकाउंट बट एज अ फुली सरेंडर सोल दे ऑलवेज वेट फॉर इंडिकेशन फ्रॉम द लॉर्ड। इसलिए कई बार उनके द्वारा किए गए कार्य बहुत अद्भुत दिखाई देते हैं, भक्तों के कार्य, जैसे हनुमान जी ने लांग दिया राइट समुन्द्र को, और रामचंद्र एक पर्वत एक ब्रिज नहीं बना पाए और हनुमान जी पूरा लांग गए एक छलांग लगा करके, तो ऐसा अद्भुत दिखाई देता है भक्तों के कार्य, लेकिन भगवान की योजना से भगवान की इच्छा से ये संभव हो पाता है। फिर एक जगह प्रभुपाद लिखे हैं कि पूरे युद्ध का निर्माण ही किया गया था अर्जुन को क्रेडिट देने के लिए, ये पूरा युद्ध उसके लिए बनाया था, भगवान चाहते थे प्रलय हो सब लोग समाप्त हो जाए तो इसलिए अर्जुन को निमित्त बनाया कि तुम ये कार्य करोगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा था पृथ्वी से अच्छे जब तक नगर आदि ग्राम, प्रभुपाद स्वयं लिखते हैं भागवतम में कि ऐसा कार्य चैतन्य महाप्रभु चाहे तो खुद भी कर सकते थे, लेकिन वो अपने किसी निष्ठावान सेवक को एक क्रेडिट देना चाहते थे, तो फिर वो क्रेडिट उनको प्राप्त हुआ, यदि प्रभुपाद खुद ही लिख रहे ये कार्य। सो दिस इज द वे वी शुड अंडरस्टैंड कि भगवान कई बार ऐसा ढोंग करते हैं कि मैं तुम पर निर्भर करता हूँ, भूख लगी तो यशोदा माता जब तक खिलाएगी नहीं तब तक भूखे रहेंगे, अब खिलाओ खिलाओ या नहीं खिलाए थोड़ा लेट हो गया तभी वो भूखे रहेंगे, ऐसा कई बार ढोंग करते हैं भगवान, फिर वो कई बार जमीन के अंदर छिप जाते हैं, मुझे बचाओ मुझे गर्मी लग रही है माधवेंद्रपुरी बाहर निकालो मुझे, इस मिट्टी में गड़ गया हूँ मैं, यहाँ से निकालो मेरा स्थापना करो, तो ऐसा लगता है दिखाते हैं भगवान कि वो अपने भक्त के ऊपर आधारित है निर्भर करते हैं, लेकिन एक्चुअली भगवान उसको केवल निमित्त बनाने के लिए सब कार्य करते हैं, भगवान ये लीला प्रस्तुत करना चाहते हैं। फिर से अगेन छठे स्कंद में फिर से प्रभुपाद ने कहा, आगे पहले चौथे स्कंद में बताया था, अभी छठे स्कंद में प्रभुपाद ने फिर से श्रीमद् भागवतम में कहा है कि चैतन्य महाप्रभु सारे संसार में प्रचार करने के लिए सक्षम थे, लेकिन उनकी निष्कारण कृपा से ये कार्य उनके सेवकों के लिए उन्होंने छोड़ दिया। और आप सोचिए प्रभुपाद का कृपा, चैतन्य महाप्रभु ने अपने सेवक के लिए छोड़ा प्रभुपाद के लिए कार्य सारे विश्व के लिए राइट, लेकिन प्रभुपाद ने भी वो कार्य उनके शिष्य के लिए छोड़ा, उन्होंने छोड़ा किया लेकिन अधिक कार्य उनके शिष्य के लिए छोड़ा, और उनके शिष्य के जो कार्य है वो हम सबको बांट रहे हैं, कि आप उस कार्य को पूरा करें। तो हमें भगवान ये क्रेडिट देना चाहते हैं, लेकिन वो क्रेडिट को हमें स्वीकार करना, ग्रहण करना आना चाहिए। तो प्रॉपर एग्जांपल दिया एक बॉम्बे लैंड का, बॉम्बे का जो लैंड था वो भगवान चाहते तो ले सकते थे, राधा रास बिहारी वाला मंदिर का, लेकिन भगवान इस बात का क्रेडिट अपने भक्तों को देना चाहते थे कि तुम संघर्ष करो और जमीन को हासिल करो। तो ऐसे सब जगह पर अगर आप देखोगे तो करते हैं स्वयं भगवान, लेकिन अपने भक्तों को आगे कर देते हैं। यही भगवान का स्वभाव है। सो और एक लेक्चर प्रपत कहे, एंड होल वर्ल्ड इज अ प्रॉब्लम, द होल वर्ल्ड इज अ प्रॉब्लम फॉर ऑर्डिनरी पर्सन, बट टू अस इट इज नॉट अ प्रॉब्लम बिकॉज वी सी एवरीथिंग इज कृष्णस। लोगों के लिए संसार एक समस्या है, लेकिन हमारे लिए संसार एक समस्या नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये सब कृष्ण का सृष्टि है। अगर कभी कोई समस्या है भी तो कृष्ण की समस्या है, मेरी समस्या थोड़ी है। प्रॉब्लम कृष्ण की है ना। आज संसार में समस्या कोई है, ये मेरी प्रॉब्लम है। जैसे फॉर एग्जांपल ये संस्था में हम जो है कई बार लोग बोलते रहते हैं ये पॉलिटिकल, यहाँ पर पॉलिटिकल है सब, यहाँ पर बहुत राजनीति करते हैं, यहाँ पर भक्तों के बीच में बहुत समस्या है, यहाँ पर मैनेजमेंट के साथ समस्या है। कई बार कुछ ऐसे लोग होते हैं कि नेगेटिव बोलते 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 इतना ड्राइड अप हो जाते हैं, पूरा सूख जाते हो बोलते बोलते, फिर उनको फिर किसी चीज में रुचि नहीं रखते। आप उनको बोलोगे कृष्ण कथा सुनोगे तो बोले अरे क्या कृष्ण कथा सुनेंगे, ये सबका क्या वैल्यू है, सब जगह इतना कष्ट ही कष्ट है, इतना प्रॉब्लम है, भक्तों के आचरण में कहीं त्रुटियां पाई जाती है, अब क्या कृष्ण कथा सुनेंगे। तो वो इतने सुख जाते हैं कि अगर उनको कृष्ण कथा भी सुनने को बोलोगे तो मना कर देते। आप उनको बोलो कि चलो हम कीर्तन करते साथ बैठकर, तभी भी मना कर देते, क्योंकि उनका उत्साह ही चला गया है, सूख गए पूरी तरह से। लेकिन आप सोचिए हम लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सेवा दे रहे हैं, राइट? क्योंकि यही हमारे कंट्रीब्यूशन, हमारी ओर से जो कंट्रीब्यूशन हम दे सकते हैं चैतन्य महाप्रभु को, तो वो हम इस संस्था के माध्यम से हमें अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। और ये संस्था जो है वो स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने स्थापित किया है, प्रभुपाद ने तो केवल इसको फैलाया है और प्रभुपाद ने स्ट्रक्चर दिया ताकि ये संस्था आने वाले 10,000 साल तक चले, राइट? तभी इसमें आप सेवा दे रहे हो, इसी का अर्थ ये नहीं कि आप और संस्था अलग है, आप ही संस्था के सदस्य हो, आप ही संस्था हो राधर। क्यों? क्योंकि ये संस्था किसी व्यक्ति ने नहीं बनाई है, ये संस्था स्वयं भगवान ने बनाई है, चैतन्य महाप्रभु ने ये आंदोलन, और श्री प्रभुपाद उनके सन्निष्ठ सेवक इस संस्था का गाइडलाइन दिया है इसको चलाने के लिए। तभी संस्था जब भगवान की है, ये आंदोलन भगवान का है, प्रचार कार्य भगवान का है, तो अगर कोई समस्या आती है तो किसकी है? तो भगवान की है ना, हमारी थोड़ी है समस्या, है ना? हम तो केवल प्रयास कर सकते हैं कि अगर समझ लो कि दो भक्त आपस में झगड़ रहे हैं और इससे संस्था का नुकसान भी हो रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं ये तो नहीं कर, एक समस्या आपको लगा ये तो मेरे लिए समस्या आ गई, लेकिन अब मैं क्या करूंगा? भैया समस्या तो भगवान की है, भगवान शक्ति देंगे, निमित्त बनाएंगे, सॉल्व करके दे देंगे। अगर सॉल्व नहीं होगा तो अभी भी उनकी प्रॉब्लम, हमारी प्रॉब्लम तो है नहीं, है ना, कृष्ण की प्रॉब्लम है। हाँ, लेकिन मैं मेरी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, नहीं, ऐसा नहीं कि हाँ अरे भाई भगवान करेंगे सब, अब मुझे कुछ नहीं करना, भगवान का प्रॉब्लम है, मैं मेरी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, मुझसे अगर जितना भी हो सकता है मैं पूरा प्रयास करूंगा, इसके बाद भी अगर कुछ परिवर्तन नहीं आता है, कृष्णा यू आर द बॉस, आपकी जो इच्छा है, व्हाटएवर यू वांट। ये तरीका होना चाहिए, इसलिए कभी हताश नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, हाय हाय अब क्या करें, ये तो इतनी बड़ी समस्या आ गई, ये भक्तों के बीच में ऐसा हो रहा है, मैनेजमेंट में ऐसा हो रहा है, अरे तुम क्यों इतना चिंता करते हो, तुम अपना सेवा करो ना, तुम्हारा कार्य है भगवान की सेवा करना, गुरु की सेवा करना, तो वो करो ना, बाकी सबका क्यों सोचते हो, ये ऐसा नहीं करता, वो ऐसा नहीं करता, वाय आप अपना ही समय बर्बाद करते हो ऐसी ऐसी फालतू चीजों के अंदर। हाँ अगर आपसे कुछ हो सकता है तो आप अवश्य कीजिए, आपसे कुछ नहीं हो सकता है तो कम से कम वो तो कीजिए कि जो आपसे हो सकता है ना, वो तो आप कर ही सकते हो। अगर आप किसी की सहायता नहीं कर सकते तो कम से कम अपनी सहायता तो करो। सो ये तरीका हमें सोचना चाहिए। अपनी सहायता का अर्थ होता है कि कम से कम आप तो अपना सेवा तो कम मत करो, आप अपनी माला का जप तो कम मत करो, आप अपने पर तो कृपा करो, आप कम से कम साधन भक्ति में से आप तो दूर मत हो, ये अपनी सहायता। क्योंकि यू नो चैरिटी बिगिंस एट होम, दूसरों की सहायता करने से पहले क्या बोलते हैं आपको प्लेन में, एरोप्लेन में बोलते हैं है ना, अगर आप प्लेन में जाते हो तो ऊपर से आपको अनाउंसमेंट करते कि ऊपर से ऑक्सीजन मास्क आएगा, तो सबसे पहले ऑक्सीजन मास्क खुद को लगाओ, बाद में बाजू वाले को लगाना, तो सबसे पहले अपनी सहायता करो, खुद करो, और फिर दूसरों की सहायता करना है, लेकिन अपनी अपने कृष्ण भक्ति के रिस्क के ऊपर नहीं, अपने कृष्ण भक्ति को दाव पे लगा करके नहीं, ये गलत आइडिया है। अगर आप अपनी कृष्ण भक्ति दाव पे लगा देते हो, आप सोचते हो कि नहीं उसने तो मुझे बहुत हेल्प किया है, मैं तो ऑब्लाइज्ड हूँ, जैसे कर्ण ने सोचा था है ना, मैं तो दुर्योधन का ऋणी हूँ, अरे पूरे लाइफ में कभी दान लिया नहीं था, और एक बार दान क्या ले लिया, दुर्योधन के पूरा लाइफ गाता रहा कि मैं दुर्योधन का दान ऋण ले लिया, दुर्योधन का लिया, तो लेने से पहले सोचना चाहिए था ना। और फिर चलो इतना भी नहीं, स्वयं भगवान आकर के उसको बोलता है कि भाई अब तू शरणागत हो जा मुझे तो मैं तुझे बचा सकता हूँ, तभी भी नहीं ना, हम तो वही करेंगे, तो कर भाई तू,
भगवान जी की इच्छा,
ऑफकोर्स इच्छा थी, लेकिन भगवान लोगों के सामने दिखाना चाहते हैं,
एक लोक मर्यादा स्थापित करने,
एक स्थापित करना चाहते हैं,
हम इसको कहते रहे राजा फिर भी नहीं
आया, यस तो अपने ऐसे कई चीजें, भीष्म का भी ऐसा ही है, भीष्म भी लोगों को दृष्टांत देने के लिए ही इस प्रकार से कार्य किए, लेकिन तात्पर्य कहने का ये है कि अगर आप भगवान के आदेश का पालन नहीं करते, भगवान के निमित्त बनने का प्रयास नहीं करते, और आप अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ घोषित करना चाहते हो विनम्रता के माध्यम से, तो ये कैसे हो सकता है, तो फिर आपको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। When you take it, this is your problem, अगर जब आपको लगता है कि आपकी समस्या है तो कृष्ण फिर आपको सॉल्व करने का पूरा अवसर देते हैं। जब आपको लगता है कि ये समस्या आपकी है तो फिर आपको पूरे पूरा अवसर प्राप्त होता है कि आप खुद इसको सॉल्व करो। जब कुछ नहीं कर पाते आप तब फिर भगवान कहते हैं हो गया तुम्हारा प्रयास खत्म। तो इस तरह से कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं करता हूँ, लेकिन ये समझना चाहिए कि वास्तव में कृष्ण ही मुझे निमित्त बनाते हैं हर एक कार्य के लिए। और ये निमित्त बनाने का अर्थ ये नहीं हुआ कि आप बहुत बड़े भाग्यशाली भक्त हो, आप बहुत पुण्यशाली भक्त हो इसलिए भगवान ने आपको निमित्त बनाया, ना इसलिए नहीं, भगवान हमें निमित्त बनाते हैं उनकी निष्कारण कृपा के कारण, ऐसी कृपा के कारण। अगर वो चाहे तो और किसी को भी ये निमित्त बना सकते थे, लेकिन आपको निमित्त बनाया बस, और कोई कारण नहीं है, बस उनके मन में आप पर कृपा करने की इच्छा होगी, बस और कोई कारण नहीं। आप हमें ऐसा मुझ में ऐसा कोई गुण नहीं है कि एक भी गुण अगर पूरी हिस्ट्री में से निकाला जाए कि मैंने ऐसा कोई कार्य किया है भूतकाल में जिसके कारण कृष्ण ऑब्लाइज्ड है आपको निमित्त बनाने के लिए, कृष्ण बाध्य है या कृष्ण फेवर करने वाले हैं या फिर कृष्ण कंसिडर किए कि ना ना ये भक्त ने बहुत कार्य किया है, चलो इसको थोड़ा हेल्प कर देते हैं। कृष्ण ऐसे किसी प्रकार के बंधन से बंधे हुए नहीं है। हम जो सेवा करते हैं उसका सिर्फ और सिर्फ केवल हमारा लाभ होता है और कुछ नहीं। भगवान को इससे कोई लेना देना नहीं। सो ये निमित्त मात्र भव सव्यसाची, कृष्ण का प्लान है ये समझ करके अर्जुन को युद्ध करना चाहिए और अहंकार से दूर रहना चाहिए। आगे पढ़िए।
कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः तुम उनका वध करो और अनिक भी विचलित न हो, तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे।
भगवान ने कह दिया यहाँ पर फिर से, देखो जीत किसकी होगी, तुम्हारी होगी, ये क्लियर है, तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे, स्पष्ट रूप से बता दिया। यहाँ पर क्या कहा भगवान ने कि द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण। अब यहाँ पर जयद्रथ बीच में आ गया, पहले द्रोण, भीष्म, कर्ण का बात हुआ था, अब बीच में जयद्रथ आ गया। तो जयद्रथ इसलिए यहाँ पर उपयोग हुआ है क्योंकि वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, एक दिन बहुत महत्वपूर्ण कार्य करने वाला है। जयद्रथ के अगर आपको ऐसे तो आप सब पता ही होगा, आपको कथा याद ही है, संक्षिप्त में अगर बताए तो उसने द्रौपदी को असहाय समझ करके वनवास के दौरान, और द्रौपदी इतनी सुंदर थी कि रुक्मिणी कृष्ण की जो पत्नी है वो सारे संसार में उनसे सुंदर कोई कन्या थी ही नहीं, और सेकंड नंबर पे आती थी द्रौपदी, उनसे सुंदर कोई कन्या थी ही नहीं सारे संसार में। उस समय अप्सरा भी उसके सामने फीकी पड़ जाए, अप्सरा का भी कोई वैल्यू नहीं। तो जयद्रथ का बड़ा इच्छा था स्वयंवर में उसको जीतने का, और उससे कुछ हो तो पाया नहीं, दुर्योधन से ना हुआ, जयद्रथ से कुछ नहीं, अर्जुन जीत गया स्वयंवर। तो उसके मन में खटका रह गया था कि एक इतनी विश्व सुंदरी को गंवा दिया मैंने अपने हाथों से, और उसको असहाय देखा तो आसुरी राक्षसी भाव उसके मन में प्रकट हुआ और उसने किडनैप करने का सोचा। जयद्रथ ने द्रौपदी को किडनैप करने का प्रयास किया, पहले तो एक चांटा खा लिया द्रौपदी के हाथ का, लेकिन उसने उसका जो काम था वो इतना प्रबल हो गया उसको किडनैप करने का, जैसे किडनैप किया तो एक ऋषि ने पीछा किया जयद्रथ का, और जयद्रथ ने युधिष्ठिर एक वो ऋषि ने युधिष्ठिर महाराज को मैसेज भिजवा दिया कि इस तरह से तुम्हारी पत्नी का अपहरण हुआ है। तो भीम और अर्जुन को भेजा युधिष्ठिर ने, और भीम और अर्जुन के सामने तो संसार में कोई ऐसा था ही नहीं कि इनके सामने कोई टिक सके, जयद्रथ कौन सी बड़ी बात है। जयद्रथ को पकड़ लिया, उसको मृत्युदंड देने वाले थे, लेकिन द्रौपदी ने उसको मना कर दिया क्योंकि उसका रिश्तेदार होता था। तो पांच चोटी छोड़ दी उसके सिर के ऊपर और दास बना दिया उसको। लेकिन वो जयद्रथ जो है उसको इतना अपमान हुआ, क्षत्रिय जनरली अपमान को सहन नहीं कर सकते, उनके लिए अपमान मृत्यु से अधिक भयानक है। तो जयद्रथ ने इस अपमान को इतना गंभीरता से लिया तो उसने उपासना शुरू कर दी शिव जी का, तपस्या शुरू कर दी। तो उसको दो वरदान प्राप्त हुए, उसने पिताजी से एक वरदान लिया और शिव जी से एक वरदान लिया। शिव जी से एक वरदान ये था कि वो पांच पांडवों को मारना चाहता था, तो शिव जी ने कहा देखो तुम पांच पांडवों को तो मार नहीं सकते, अर्जुन तो अजय है क्योंकि उसके साथ तो कृष्ण है, इसलिए उनको तो तुम मार ही नहीं सकते, लेकिन तुम बाकी चार पांडवों को मार सकते हो। लेकिन फिर लिमिटेशन यहाँ पर ये था कि ये लोग के तुम प्राण नहीं ले पाओगे, ये चार लोग जो है उनके प्राण नहीं ले पाओगे, क्योंकि भगवान की इच्छा है कि उन लोग के प्राण सुरक्षित रहे, क्योंकि तुम प्राण नहीं ले पाओगे तो फायदा क्या। बोले पूरे युद्ध में किसी भी कोई भी एक युद्ध में एक दिन तुम वो चार लोग तुम्हें हरा नहीं पाएंगे, बस ये चार तुम्हें हरा नहीं पाएंगे। तुम उनको नहीं हरा पाओगे लेकिन वो भी तुम्हें नहीं हरा पाएंगे। तो वही दिन था और उसको दूसरा वरदान था कि उसके पिताजी ने दिया था कि जिसका गोद में उसका कटा हुआ सिर गिरेगा वो उसी समय जिसके हाथ से गिरेगा
उसके सिर फट जाएगा,
उसका सर फट जाएगा। जो समझ जिसने उसकी हत्या की है वो गिरा कट के सिर कट के नीचे गिरा, तो जिस जो उसका कारण बनता है उसके सिर को नीचे फेंकने वाला उसके सिर में विस्फोट हो जाएगा। तो अर्थात उसको मारने वाला तो मर ही जाएगा, ऐसा निश्चय हो गया था। तो ये अभिमन्यु का वध हुआ था, तो अभिमन्यु के वध के समय पे अर्जुन को रणनीति के अनुसार बहुत दूर भेज दिया था युद्ध करने के लिए, और जयद्रथ ने चक्रव्यूह के गेट के ऊपर ही आ गए, चक्रव्यूह बनाया था वो चक्रव्यूह के गेट के ऊपर खुद ही बैठ गया, वो किसी को अंदर आने ही नहीं दिया। अभिमन्यु आ गया, बाकी चार पांडवों को वही दिन था तो हरा नहीं पाए चार पांडव उसको। अब पांडव भी सोचने पड़ गए भीम युधिष्ठिर सब क्या आदमी है, इसको तो उसने हमने मार डाला था, पकड़ लिया था, परास्त कर दिया था, आज क्या हो गया, ये हार ही नहीं पा रहे। भीम के लिए तो वो मच्छर जैसा था जयद्रथ, कुछ नहीं था, इतना शक्तिशाली है भीम तो, लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया जयद्रथ, इतनी शक्ति कहां से आ गई इसके पास, वरदान था। तो पूरा दिन कुछ नहीं हुआ, अभिमन्यु का वध हो गया। दूसरे दिन जब प्रतिज्ञा करके अर्जुन आए कि अगर आज के दिन में सूर्यास्त के पहले जयद्रथ का वध नहीं हुआ तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा, तो पूरा युद्ध खत्म होने तक बहुत दूर तक, कुछ अहमदाबाद से गांधीनगर से भी आगे इतना दूर था अर्जुन और जयद्रथ के बीच का डिस्टेंस, काफी दूर था। आप सोचो अभी घोड़े कितना दौड़ेंगे, ये अर्जुन यहाँ पर और जयद्रथ पूरी कौरव सेना के अंत में, इतना दूर था। तो इन सबको पार करते 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 सूर्यास्त का समय आ गया, तो फिर भगवान ने थोड़ा वो ट्रिक किया था, सूर्य ग्रहण डाल दिया, छिपा दिया सूर्य को, और जब अर्जुन करीब आ गया तो भगवान ने योजना बनाई फिर से, देखो सूर्य भी अस्त नहीं हुआ, इसका हत्या कर दो। तो जयद्रथ का सिर ऐसे ही भगवान ने पहले से अर्जुन को बता दिया था कि अपना ऐसा कोई बाण छोड़ना कि उसका सिर भूमि पे ना गिरे, उसका सिर अपने बाप की गोद पे जाके गिरे, ऐसा कोई बाण छोड़ना। और अर्जुन के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी कि किसी के सिर को किस तरह से काटना और कहां पर उसके जाके गिराना, ये अर्जुन के लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो ऐसा ही बाण लगाया अर्जुन ने, सीधा उसके बाप की गोद में जाके गिरा, तो उसके बाप ने देखा अपने बेटे का सिर है क्या है, तो उसने फेंक दिया जमीन पे, जैसे जमीन पे गिर गए तो बाप भी मर गया बेटा भी मर गया। तो भगवान ये जयद्रथ का यहाँ वर्णन कर रहे हैं, भगवान कह रहे ये भी मरने ही वाला है मेरे हाथ, ये जिया नहीं, इसको भी तुम ही मारोगे अर्जुन। देखो भीष्म को मारने का कारण जो भीष्म और कर्ण और ये जयद्रथ, ये तीन ऐसे योद्धा थे जिसको मारने के लिए अर्जुन को निमित्त बनाया था। तो इस तरह से भगवान यहाँ पर जयद्रथ का बात बताते हैं। तत्पश्चात आगे टेक्स्ट नंबर 35 में आई थिंक अर्जुन अब बोलेंगे।
संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, यस हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया, फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा।
केशव शब्द का अर्थ होता है ब्रह्मा जी और शिव जी का जो पालन करने वाले हैं, वो केशव है। के ककार से ब्रह्मा, शकार से शिव, वकार से पालन करने वाला। तो केशव जो है वो भगवान का नाम है और यहाँ पर किरीटी शब्द का उपयोग हुआ है। अर्जुन के कई नाम है, उसमें से एक नाम है किरीटी, ये अर्जुन का एक नाम है। अर्जुन को एक किरीटी इसलिए कहा गया है, ऐसे जो किरीटी शब्द का अर्थ होता है हेलमेट, जो मुकुट होता है ना, ये मुकुट को किरीटी बोलते हैं। लेकिन वो किरीट अर्जुन का जो मुकुट था वो स्वर्ग से आया था, स्वर्ग का मुकुट पहनते थे अर्जुन, इधर का नहीं था। एक बार ऐसा हुआ था कि रसातल से कोई असुर इंद्र के ऊपर आक्रमण किया था, स्वर्ग के ऊपर, स्वर्ग के, तो इंद्र उसके साथ युद्ध करते करते उसको लगा कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, तो उसको पता था कि अर्जुन बहुत ही होशियार है, तो उसने इमरजेंसी कॉल कर दिया अर्जुन को पृथ्वी पर से कि भाई तुम्हारे पिताजी बुला रहे हैं युद्ध में सहायता के लिए। तो ऐसे अर्जुन स्वर्ग में जाते थे, पिता है ना इंद्र उनके, तो अर्जुन गए उधर और उन्होंने हरा दिया सबको। सो बाद में इंद्र खुश होकर के उसको मुकुट दे दिया कि जाओ ये मुकुट स्वर्ग की ओर से तुम्हें गिफ्ट। तो इस तरह से वो इतना महान था, उसको इंद्र का ये हेलमेट मिला था, लेकिन फिर भी भय के कारण विराट रूप को देख करके कांप रहा था वो। इसलिए अर्जुन अब देखो आगे क्या कहते हैं, पढ़िए 36।
अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं किंतु असुर गण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं, ये ठीक ही हुआ है।
यहाँ पर भगवान के विराट रूप के दोनों पहलू को बताया है अर्जुन ने। कुछ लोग हैं जो भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भगवान से आकर्षित हैं, और कुछ लोग हैं कि जो भगवान से भयभीत होकर के भाग रहे हैं। तो एक ही स्वरूप में ये दोनों लक्षण पाए जाते हैं, वो भयभीत भी करते हैं और सुरक्षा भी देने वाले हैं। सो 11 श्लोकों में अर्जुन जो प्रार्थना करते हैं उसमें पहले श्लोक में अर्जुन के भगवान के विराट रूप का ये चीज यहाँ पर भगवान ने बताया। ये ट्रेम्बलिंग जो होता है, एक बार प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक में थे, सो प्रभुपाद से, सो विदाउट सीइंग विश्व रूप सिंपली बाय अबाइडिंग बाय द ऑर्डर्स ऑफ कृष्ण देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ ट्रेम्बलिंग। भगवान बोले, प्रभुपाद ने कहा कि विराट रूप को देखना और बाद में ट्रेम्बल करना, ट्रेम्बलिंग क्या बोलते हैं उसको, कांपना, तो इससे अच्छा है कि वो विराट रूप को देखने की आवश्यकता ही नहीं है, केवल कृष्ण के आदेशों का पालन करो और कांपने की आवश्यकता नहीं है। तो डॉक्टर पटेल ने कहा कि हमें विराट रूप को तो देखने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए, तो प्रभुपाद ने कहा हाँ, विराट रूप हमारे लिए नहीं है, हमें देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए। सो यहाँ पर भक्त लोग स्तुति करते हैं और असुर लोग भाग जाते हैं। 37 पढ़िए।
हे महात्मा, ब्राह्मण की पण श्रेष्ठ आप आदेष्ट त्रष्टा छो, तो पछी तेओ आपने सादर प्रणाम केम न करे। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आपच परम अविनाश स्रोत छो, सर्व कारणों ना कारण रूप छो, तथा आप भौतिक जगत थी पर छो।
यस, भगवान को तो आप ही सबके कारण हो। ये ब्रह्मा जी वगैरह क्या आपको स्तुति, वो आप उनके अधिष्ठाता हो, परमेश्वर हो, तो ऑब्वियसली ये लोग आपको प्रार्थना करेंगे। प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक में कह रहे हैं कि ये पुराण जो है वो कोई नए मैन्युफैक्चर किए गए नहीं है, अगर मुझे प्रणाम ही करना है तो मैं कृष्ण को क्यों करूं, कृष्ण को क्यों ना करूं, दूसरे को क्यों करूं? प्रणाम ही करना है तो फिर भगवान को क्यों ना करें और किसी को क्यों करें? प्रभु एग्जाम्पल देते, इफ यू गो टू परचेज सम मेडिसिन, आप दवाई लेने जाते हो और दवाई वाला अगर आपको कहता है कि ये दवाई ओरिजिनल है और ये दवाई जो है वो डुप्लीकेट है, लेकिन उसको सस्ता भाव है, उसका प्राइस कम है लेकिन सेम इफेक्ट है, तो प्रभुपाद ने कहा कि मैं डुप्लीकेट क्यों खरीदूं? जब मुझे ओरिजिनल प्राप्त हो रहा है तो मैं डुप्लीकेट क्यों जाऊं? जब मुझे ओरिजिनल भगवान मेरे पास है तो मैं डुप्लीकेट के पास क्यों जाऊंगा? प्रभुपाद फिर बताया, ये गदाधर चटर्जी जिसको लोग रामकृष्ण परमहंस कहते थे, वो मृत्यु के समय पे अपने आप को भगवान घोषित किया था, मैं ही राम हूं, मैं ही कृष्ण हूं। और उनका जो सबसे बड़ा प्रसिद्ध शिष्य था, जो चेला, जिसने विदेश में जाके भाई और बहनों बोल दिया बस क्या बात हो गई, तो उनका जो विदेश का उनका जो चेला था उसने इस बात को स्वीकार कर लिया, हाँ तुम ही भगवान, तुम ही राम हो, तुम ही कृष्ण हो। तो इस तरह से ओरिजिनल राम और कृष्ण के पास क्यों, डुप्लीकेट के पास क्यों जाने का? तो भगवान यहाँ पर ये बताना चाहते हैं, अर्जुन ये बताना चाहता है कि ये लोग अगर आपको प्रणाम कर रहे हैं तो इसमें कोई बहुत बहुत बड़ी बात नहीं है, that's fine if they are doing it, they should do it। ब्रह्मा शिव चंद्र जितने आप ही देवेश हो, जगत निवास हो, सबके आदि कारण हो, आप ही सब कुछ हो, so there is nothing wonderful। नेक्स्ट श्लोक पढ़िए।
आप आदि देव सनातन पुरुष तथा इस सृष्टि जगत के परम आश्रय हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही वो सब कुछ हैं जो जानने योग्य है, आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं, हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है।
तात्पर्य पढ़िए।
प्रत्येक वस्तु भगवान पर आश्रित है, अतः वे ही परम आश्रय है। निधानम का अर्थ है ब्रह्म तेज समेत सारी वस्तुएं भगवान कृष्ण पर आश्रित है, वे संसार में घटित होने वाली प्रत्येक घटना को जानने वाले हैं, और यदि ज्ञान का कोई अंत है तो वे ही समस्त ज्ञान के अंत हैं, अतः वे ज्ञाता हैं और वे जानने योग्य भी हैं, क्योंकि वे सर्वव्यापी हैं। वैकुंठ लोक में करण स्वरूप होने से वे दिव्य हैं, वे दिव्य लोक में भी भगवान पुरुष हैं।
Yes. So, एक रूप से ये भगवान का स्तुति है अर्जुन के द्वारा। और एक दो श्लोक में आएगा, पढ़िए आगे।
आप वायु छो तथा सर्वोपरि नियंत्रण छो, आप अग्नि छो, जड़ छो तथा चंद्रपण छो, आप प्रथम जीवात्मा ब्रह्मा छो, अने आप प्रपितामह छो, तेथी आपने हजार बार नमस्कार छे, अने मारा वारंवार नमस्कार छे।
यस, तो अर्जुन अभी प्रैक्टिकली खड़े होकर के सीधा जमीन पर दंडवती कर रहे, स्पष्ट रूप से कहा, आई देयरफॉर ऑफर माय रिस्पेक्टफुल ओबेसेंसेस टू यू 1000 times एंड अगेन एंड येट अगेन, मैं आपको बार 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 प्रणाम कर रहा हूं। तो ये और एवरेस्ट वाला मूड आया है, भगवान को भगवान के ऐश्वर्य से अर्जुन प्रभावित होकर के उनको बार बार प्रणाम कर रहे हैं। अभी देखो उनके प्रणाम अलग अलग डायरेक्शन से प्रणाम कर रहे हैं। पढ़िए।
आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है, हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं और सर्वव्यापी है तथा आप सब कुछ हैं।
यस, अभी इतने सारे प्रणाम करते हैं कि ऊपर से भी प्रणाम, सामने से भी प्रणाम, पीछे से भी प्रणाम, सभी दिशाओं से मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। वो इतना गदगद हो गया अर्जुन कि अब देखो उसके मन में वो सारी भावना याद आती है कि कृष्ण मेरा मित्र जो है, ये इतना बड़ा विराट रूप दिखाया तो ये तो स्वयं भगवान है और मैं तो तुम्हें प्रणाम करता हूँ, आप सबके आदि हो, मूल हो, परमेश्वर हो। अब अर्जुन को स्मृति हुई पहले की, तो एक 41-42 में वो पढ़िए।
आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठपूर्वक आपको हे कृष्ण हे यादव हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपके महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया इसके लिए मुझे क्षमा कर दे। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेते हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें।
हाँ, अभी यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मैं आपको अपना मित्र मानता था। एक्चुअली प्रभुपाद कहते हैं कि ये अर्जुन का माइनस पॉइंट है। एक्चुअली अर्जुन ने ऐसा नहीं करना चाहिए था, अर्थात का ऑफ कोर्स ये भगवान की इच्छा ही है, लेकिन ये प्रगति नहीं है अर्जुन की। अर्जुन सख्य भाव में था, वो भाव ऐश्वर्य भाव से श्रेष्ठ है भाव की तुलना में, लेकिन अर्जुन ऐश्वर्य भाव से प्रभावित हुआ और अपने सख्य भाव के द्वारा किए गए वर्तन को वो उसके कारण वो दुखी हो रहे थे। तो अर्जुन का ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं कभी कभी आपको कृष्ण हे कृष्ण कृष्ण यादव सखे थी सखा ऐसा बोल, श्री कृष्ण भी नहीं बोलता ऐसे रिस्पेक्ट के साथ, हो आप तो भगवान हो भगवान श्री कृष्ण, श्री कृष्ण भी नहीं, हे कृष्ण 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 जी कृष्ण महाराज ऐसा कुछ नहीं, कृष्ण ही बोलते सीधा डायरेक्ट। और कभी यादव के विषय में विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि कभी कभी उनको वसुदेव का पुत्र वासुदेव कहते थे। वो वसुदेव जो थे केवल मंत्री थे और पांडव तो राजा थे, तो इस तरह से वो तो उनकी हायर पोजीशन है अर्जुन की। और एक रूप से देखा जाए तो यादव तो ग्वाला होता है और कृष्ण तो क्षत्रिय है, अर्जुन तो क्षत्रिय है। तो एक रूप से देखा जाए तो मैं तो तुम सखा ये बनने के योग्य नहीं, लेकिन बड़ा प्रेम है तुम्हारे साथ तो मैं तुम्हें अपना सखा बनाता हूँ। ऐसे कभी कभी तो भगवान अर्जुन भगवान के साथ सो जाते थे। एक ऐसे घनिष्ठ मित्र होते तो उनके लिए कोई आम बात है ना, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। अपने मित्र के बिस्तर पे सो जाते, भगवान की प्लेट में से खा लेते थे, ऐसा कोई उनके लिए कॉमन बात थी। मित्र है तो कॉमन है, ये भगवान की प्लेट से खा लेते थे। फिर मैंने जान क्या क्या है, सीट टुगेदर सेम बेड एट एट टुगेदर समटाइम रोज समय इन फ्रंट ऑफ मैनी फ्रेंड्स, कई बार लोगों के सामने तुम्हारी मजाक उड़ा देता था कृष्ण। कभी कभी सबके सामने कहते थे कृष्ण की टांग खींच लेते थे कि कृष्ण का मजाक उड़ाते थे। तो ये केवल मित्र कर सकता है, एक मित्र दूसरे मित्र का मजाक उड़ा सकते। तो ये सब मैंने किया अनजाने में, किया गलती से किया, ये सारे अपराधों के लिए मुझे क्षमा कर दो। कृष्ण को भी सुनते आश्चर्य होगा वो क्या बोल रहे हैं, क्षमा कर दो। अच्युत शब्द का उपयोग है, अच्युत शब्द का अर्थ होता है कि भगवान अपने प्रेम में अपने अफेक्शन में कभी अच्युत नहीं होते, स्टेप बैक नहीं करते। वो कभी भी अच्युत का अर्थ होता है कि वो कभी उनका पतन नहीं होता, वो हमेशा स्थिर रहते हैं। तो इसलिए अर्जुन को थोड़ा शर्म आने लगा, ओ कृष्ण आप तो इतने भगवान हो, मैं तो तुम्हें इतना गिना ही नहीं कभी कि तुम इतने भगवान हो, अब पता पड़ा कि तुम तो बहुत बड़े भगवान हो। सो इज फीलिंग आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस, इस तरह से भगवान से क्षमा याचना करने का शुरू कर दिया। पढ़िए आगे।
आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं, आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं, न तो कोई आपके तुल्य है नहीं कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है।
यस, आप इस सारी सृष्टि के पिता समान हो, यू आर द फादर ऑफ दिस कंप्लीट। तो इसलिए अर्जुन भी यहाँ पर कह रहे हैं कि तीनों लोक में आपसे श्रेष्ठ या आपसे महान कोई हो भी सकता है क्या? कभी नहीं। और इस तरह से आप एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में भी कार्य कर रहे हो, आप सुप्रीम स्पिरिचुअल मास्टर के रूप में भी कार्य करते हो, इसलिए लोगों को उपदेश देना, उनको उद्धार करना, उनको शिक्षा देना, ये कार्य भी आप कर रहे हो। तो भगवान भी है, लेकिन भगवान एक पिता के रूप में भी कार्य करते हैं, गुरु के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। तीनों लोक में आपसे महान और कौन हो सकता है, ऐसा अर्जुन यहाँ पर कह रहे हैं। पढ़िए आगे।
आप जीव मात्र ना पूजने करवी पर छो, यदि हूँ आपने सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम करू छू अने आपने कृपा थी याचना करू छू, जेवी रीते पिता पुत्र नु उद्धतन उद्धत वर्तन सहन करे छे, एकमात्र पोताना मित्र नु तोछड़ू वर्तन सही ले छे, अथवा पति पोतानी पत्नी नो अपराध सहन करी ले छे, तेम आप कृपा करीने आपना प्रति थयेला अपराधो ने सही गणशो।
थोड़ा ठंड ज्यादा हो गया क्या? इसको थोड़ा कम कर सकते हो? तो यहाँ पर अर्जुन भगवान को दंडवत करके बोल रहे हैं। कितना था?
24
कर दो।
28
ठीक है। सो अर्जुन कह रहे हैं, मैं आपको दंडवत करता हूँ प्रभु, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। I fall down to offer you respectful obeisance। जैसे पिता अपने बच्चे को सहन कर लेता है, जैसे मित्र अपने मित्र की उद्दताई को सहन कर लेता है, जैसे पत्नी अपने पति के द्वारा मजाक को सहन कर लेते हैं, वैसे मेरे द्वारा किया गया जो कुछ भी है उसका आप सहन करो। यहाँ पर ये सब एग्जाम्पल बताए गए हैं, पिता का, पुत्र का, पति पत्नी का, मित्र मित्र का। तो ये जो एग्जाम्पल का जो मूल उद्देश्य ये है कि जब आपका भगवान के साथ जब प्रेम संबंध होता है तो भगवान आपको भी सहन करते और आप भगवान की हर एक बात को स्वीकार करते हो। उसके लिए अगर आपको अपना अपना कष्ट दिखाई नहीं दे, उसमें प्रेम में कष्ट का कोई स्थान नहीं होता है। अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रेम कर रहा होता है तो उसके लिए अगर उसको कोई भी कष्ट उठाना पड़े तो वो कष्ट उसको दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। अगर माँ और बच्चे का अगर आप उदाहरण लो तो माँ को जब बच्चा छोटा होता है या बीमार होता है तो पूरा रात उसको जगना पड़ता है माँ को, वो सोने नहीं देगा, रोता रहेगा या कुछ ना कुछ। तो आप उसमें आपको कोई कष्ट होता है? अगर आपका करीब का कोई फैमिली मेंबर है, रिश्तेदार है, अगर वो बीमार है, अस्पताल में है, तो उनके लिए अगर आपको जगना पड़े तो आप उसको कष्ट देख समझते हो? तब आपको ऐसा लगता है कि ये कष्ट है? नहीं लगता ऐसा। यही सब प्रेम संबंध के कारण ये कष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। इस तरह से भगवान के प्रति अर्जुन ये उदाहरण देकर के बताया कि जैसे कोई पिता माफ कर देता है, कोई पत्नी माफ कर देती है, कोई मित्र माफ कर देता है अपने से जो जिसे वो प्रेम करते हैं, ऐसा आप भी मुझे क्षमा कर दो। मैंने आपके प्लेट में से खा लिया, आपके बिस्तर पे सो गया, सबके बीच में आपका मजाक उड़ा दिया, आपको कृष्ण कृष्ण बोलता रहा, भगवान नहीं समझा, तो इसकी गलती को मुझे क्षमा करो। एक्चुअली अर्जुन ये जब बताया, भगवान को भी लगता है कि बस बस अर्जुन क्या कर रहे हो तुम। लेकिन अभी तो भगवान विराट रूप स्वीकार किया हुआ है, तो अर्जुन जो भी स्तुति करना चाहते हैं उनको भगवान को परमिट करते, करो जो स्तुति करना है करो। आगे पढ़िए।
આ વિશ્વરૂપના દર્શન કરીને હું આનંદ વિભોર થયો છું। પરંતુ તેની સાથે સાથે મારું મન ભયથી વિચલિત પણ થયું છે. હે દેવેશ, હે જગત આધાર, આપ મારી ઉપર પ્રસન્ન થાઓ અને મને પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર રૂપે આપના ભગવત સ્વરૂપના પુનઃ દર્શન આપો.
વાઇન્ડ અપ કરો ઇસકો. યે જો સ્વરૂપ હૈ આપકા, વિરાટ સ્વરૂપ જો હૈ, અબ બહોત હો ગયા, ગલતી હો ગઈ સર, સોરી. આપકો ક્યા મેને બોલ દિયા કે આપકા સ્વરૂપ દિખા દો, આપને તો દિખા દિયા, ઓર દેખ કરકે આપકો તો કુછ ફર્ક નહીં પડા, લેકિન મેરે તો હાથ પાંવ કાંપને લગે, અબ મુઝસે તો બરદાસ્ત નહીં હો રહા હૈ, ઇતના આપકા વિરાટ સ્વરૂપ દેખ કરકે. જય હો આપકે, પ્રણામ આપકો, અબ યહાં સે જાઓ. આપકા વો જો ઓરિજિનલ પુરુષોત્તમ રૂપ હૈ, વો પુરુષોત્તમ રૂપ હમે ફિર સે દિખાને કા કૃપા કરો. ઇસ તરહ સે અર્જુન ને ભગવાન કો રિક્વેસ્ટ કિયા. સો અર્જુન કી જો ક્યુરિયોસિટી થી વો સેટિસ્ફાઈ હો ગઈ. અર્જુન થોડા દેખના ચાહતા થા કે યે વિરાટ રૂપ કૈસા હોતા હૈ, તો દિખા દિયા ભગવાન, દેખો કૈસા હોતા હૈ. અબ શાંત, અબ હો ગયા તુમ્હારા, ઈચ્છા પૂરા હો ગયા. હા, ઈચ્છા પૂરા હો ગયા. આપ કભી દેખો, કભી આગે સે કભી પૂછુંગા ભી નહીં વિરાટ રૂપ કે વિષય મેં, એસા અર્જુન ને દેખ લિયા. સો અભી અર્જુન કહે રહે કે બસ અબ ઇસકો હટાઓ, પુરુષોત્તમ રૂપ દિખાઓ, લેકિન પહેલે બતા દે કે પહેલે ચાર હાથ વાળા સ્વરૂપ દિખાઓ ઓર ફિર દો હાથ વાળા સ્વરૂપ દિખાઓ. તો અભી જબ દિખાને કે લિયે આપ તૈયાર હી હો, તો ફિર સભી દિખાઓ, એ ભી દિખા દે, આપ વો ભી દિખા દો એક બાર ચાર હાથ વાળા, ફિર આ જાના આપને મૂળ રૂપ મેં જો હમેશા હમારે સાથ હોતા હૈ, તો દિખાઈ રહે હો તો ફિર વો દિખાઓ ચાર હાથ વાળા. પણ યે આગે,
હે વિરાટ રૂપ, હે સહસ્ત્રભુજ ભગવાન, મેં આપકે મુકુટધારી ચતુર્ભુજ રૂપ કા દર્શન કરવા ચાહતા હું, જિસમે આપ અપને ચારો હાથો મેં શંખ ચક્ર અડા તથા પદ્મ ધારણ કિયે હુએ હો, મેં ઉસી રૂપ કો દેખને કી ઈચ્છા કરતા.
હા, ઉસકો રૂપ દિખા દો, બીચ મેં વો વિરાટ રૂપ કો વાઇન્ડ અપ કરો, સાથ મેં અંત મેં વો દિખા દે ના ચાર હાથ વાળા. તો ઇસસે એક ચીજ અર્જુન સ્થાપિત કરના ચાહતે હૈ કે ચાર હાથ વાળા સ્વરૂપ ભી મૂળ સ્વરૂપ નહી હૈ, મૂળ સ્વરૂપ હૈ દો હાથ વાળા કૃષ્ણ કા સ્વરૂપ, યે સ્થાપિત કરના ચાહતે હૈ, ઇસલિયે ચાર હાથ વાળા સ્વરૂપ કો લિયે પ્રાર્થના કિયા ગયા. યે અર્જુન ને જો રિક્વેસ્ટ કિયા હૈ ચાર હાથ કા, ઇસકા યહી અર્થ હૈ કે ચાર હાથ વાળા જો નારાયણ કા સ્વરૂપ હૈ, ઉસકા ભી સ્ત્રોત જો હૈ વો હૈ કૃષ્ણ. યે મુશ્કિલ સમજાના યા સમજના ભી કે દોનો મેં ક્યા અંતર હૈ, ચાર હાથ વાળા મેં ઓર દો હાથ વાળા મેં, એકદમ સિમ્પલ અંતર હૈ, એક મેં દો હાથ ઓર એક મેં ચાર હાથ હૈ, એસા કોઈ વિશેષ અંતર નહીં હૈ, લેકિન ચાર હાથ વાળે ઓર દો હાથ વાળા મેં ચાર મુખ્ય અંતર હૈ જો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ મેં સિખાયા હૈ. રાઈટ, વેણુ માધુરી, લીલા માધુરી, ભક્ત માધુરી, રૂપ માધુરી, એ ચાર વસ્તુ એસી હૈ જો દો હાથ મેં હૈ, ચાર હાથ મેં નહીં હૈ. તો એસે ચાર હાથ મેં ઓર દો હાથ મેં કોઈ અંતર નહીં હૈ વિશેષ રૂપ સે. ઓર યહાં પર ભી અર્જુન ભગવાન કો રિક્વેસ્ટ કરે, આઈ લોંગ ટુ સી યુ ઇન દેટ ફોર્મ, આઈ વિશ ટુ સી યુ, મેં દેખના ચાહતા હું, ફિર અગર આપકો ઉચિત લગે તો મુજે દિખાઈએ. અબ દેખો ભગવાન ક્યા કહેતે હૈ 47 મેં પડીએ.
ભગવાન ને કહા, હે અર્જુન, મેને પ્રસન્ન હોકર અપની અંતરંગા શક્તિ કે બલ પર તુને ઇસ સંસાર મેં અપને ઇસ પરમ વિશ્વ રૂપ કા દર્શન કરાયા હૈ, ઇસકે પૂર્વ અન્ય કિસી ને ઇસ અસીમ તથા ચીજો આદિ રૂપ કો કભી નહીં દેખા થા.
પહેલે કભી કિસને નહીં દેખા થા, મના કર દિયા, એસા કભી હુઆ નહીં, દુર્યોધન કો દિખાય દો તો ડેમો થા, વો તો પૂરા નહીં થા. સો યદ્યપિ કૃષ્ણ કા જો દો હાથ વાળા જો સ્વરૂપ હૈ વહી મૂળ સ્વરૂપ હૈ, ઓર અર્જુન નહીં દેખ પાયા થા ક્યોંકિ કૃષ્ણ ને અપની યોગ માયા કા વિસ્તાર કિયા થા, ઓર 10મે અધ્યાય મેં ઓલરેડી ભગવાન ને કહે દિયા થા કે એકાંત સ્થિત હો જગત, ये सारे संसार को मैं एक अंश मात्र से धारण करने वाला हूँ. तो अभी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसके विषय में प्रश्न करते हैं कि तुमने विनती किया था तो मैंने तुम्हें छोटा सा एक अंश दिखाया विराट रूप के माध्यम से. विराट रूप क्या है? एक छोटा सा पार्टिकल है भगवान के लिए, स्मॉल पार्टिकल. आप अरे बाबा इतना बड़ा स्वरूप, अर्जुन भयभीत हो गया और आप कहते हो एक पार्टिकल है, एक अंश है, अंश है, अंश भी अंश का अंश है भगवान को, सो मटेरियल फॉर्म, भौतिक भौतिक स्वरूप है एक रूप से देखा जाए तो। सो तुमने कहा था तो मैं तुम्हें दिखा दिया, अब इतना डिस्टर्ब क्यों हो गए हो, अब मुझे क्यों कहते हो कि मुझ पे दया करो, मुझ पे दया करो, और मुझे कहते हो कि तुम अपना स्वरूप दिखाओ। सो प्रभुपाद इस तात्पर्य में ये भी कहते हैं कि दुर्योधन को जो दिखाया था वो वास्तव में ओरिजिनल विराट रूप नहीं था, वो छोटा विराट रूप था। अभी आगे नेक्स्ट श्लोक में इसी चीज को भगवान कहते हैं कि अब मैं जो तुम्हें दिखाया वो यूनिक है, किसी और ने इसको कभी देखा नहीं। पढ़िए आगे।
कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेदाध्ययन के द्वारा, न यज्ञ दान पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ।
कोई अपनी साधना के माध्यम से या अपने प्रयत्न के माध्यम से इस विराट रूप को देख ही नहीं सकता। इस विराट रूप को केवल भगवान के भक्ति दे सकते हैं और जिसको भगवान दिखाना चाहे बस, और कोई ये विराट रूप को देख ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। कोई आपको ये दावा करता हो कि मैं दिखाया 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 तो उसको ढोंगी ही मानना चाहिए। जो सुडो इंकार्नेशन प्रपद क्या बोलते हैं उसको, ढोंगी अवतार, जितने भी ढोंगी अवतार होते हैं ये लोग भगवान का विराट रूप का जो कहते हैं कि विराट रूप देखना है, विराट रूप देखना है या दिखा सकता हो, तो यहाँ पर तो भगवान ने स्पष्ट मना कर दिया कि भूत काल में किसी ने देखा नहीं, कोई ये स्वरूप को देख नहीं सकता, मेरी कृपा से ही देख सकते। इसको तपस्या से, वेदों से, यज्ञों से, दान से, पुण्य से, किसी भी तरह से इसको देखा, इसको देख ही नहीं सकते। अब कहां से आया तुम्हारा विराट रूप, मना कर दिया सब जगह से, इसे नहीं देख सकते, उसे नहीं देख सकते, कोई तरीका बताया नहीं कि जिसको तुम देख सकते हो। सो ये विराट रूप के विषय में प्रभुपाद ऐसा एक बार बताया था कि जब कलकत्ता में जो बॉम्बाड़ी घोड़ा था, प्रभुपाद से 1942 में भगवान ने कहा, वी हैव मोर और लेस सीन कृष्णा एज विश्व रूप ड्यूरिंग वॉर टाइम इन कोलकाता इन 1942 में युद्ध के समय पे मुझे छोटा मोटा विराट रूप का आभास हुआ था। प्रभुपाद बता रहे थे कि सायरन बजती थी और हम लोग आश्रय ढूंढने के लिए दौड़ते थे और बॉम्बिंग शुरू हो जाता था, बॉम्ब गिरना शुरू हो जाता था। इस तरह से हम काल स्वरूप को अपने आंखों के सामने देख रहे थे, कभी इधर बॉम्ब गिरेगा, कभी उधर बॉम्ब गिरेगा, अपने आंखों के सामने थे। आई वॉज थिंकिंग ऑफ कोर्स दिस इज ऑल्सो जस्ट अनदर फॉर्म ऑफ कृष्णा, बट दिस इज नॉट वेरी लवेबल फॉर्म। यही भगवान का एक स्वरूप ही है, लेकिन ये भगवान से प्रीति नहीं हो सकती है। विराट रूप से कौन विराट रूप, कभी आपने देखा है किसी को ऑल्टर में विराट रूप का फोटो रखा पूजा कर रहा हो, कभी देखा है वो क्या भोग लगाएगा उसको, हजार मुख वाला है, उसको देख के आदमी बेहोश हो जाए, डर जाए, वो क्या प्रेम करेगा भगवान को, है ना। विराट रूप को क्या फूल की माला चढ़ाओगे तुम उसको, इज़न्ट इट। सो इसलिए ये बड़ा भयानक स्वरूप है भगवान का। अभी आगे प्रभुपाद भगवान कहते हैं कि तुम बहुत परेशान हो गए, पढ़ो आगे।
तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो, अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ, तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो।
हाँ, अभी तुम देख सकते हो, तात्पर्य पढ़िए।
भगवद गीता के प्रारंभ में अर्जुन अपने पूज्य पितामह भीष्म तथा द्रोण के वध के विषय में चिंतित था, किंतु कृष्ण ने कहा कि उसे अपने पितामह का वध करने से डरना नहीं चाहिए। जब कौरवों की सभा में धृतराष्ट्र के पुत्र द्रौपदी को विवस्त्र करना चाह रहे थे तो भीष्म तथा द्रोण मौन थे, अतः कर्तव्य विमुख होने के कारण इनका वध होना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन को अपने विश्व रूप का दर्शन ये दिखाने के लिए कराया कि लोग अपने कुकृत्यों के कारण पहले ही मारे जा चुके हैं। यह दृश्य अर्जुन को इसलिए दिखलाया गया क्योंकि भक्त शांत होते हैं और ऐसे जघन्य कर्म नहीं कर सकते। विश्व प्रकट करने का अभिप्राय स्पष्ट हो चुका था। अब अर्जुन कृष्ण के चतुर्भुज रूप को देखना चाह रहा था, अतः उन्होंने ये रूप दिखाया। भक्त कभी भी विश्व रूप देखने में रुचि नहीं लेता क्योंकि इससे प्रेमानुभूति का आदान प्रदान नहीं हो सकता। भक्त या तो अपना पूजा भाव अर्पित करना चाहता है या दो भुजा वाले कृष्ण का दर्शन करना चाहता है जिससे वो भगवान के साथ प्रेम और भक्ति का आदान प्रदान कर सके।
भगवान इस रूप में कुछ नहीं हो सकता, इसमें ये रूप में प्रेम का आदान प्रदान कैसे करे? जहाँ भय होगा वहाँ प्रीति कैसे होगी? फिर अभी संजय कहते हैं धृतराष्ट्र को क्या क्या भगवान ने पढ़ी आगे।
संजय धृतराष्ट्र ने कहे, अर्जुन ने आ प्रमाणे कह्या पछी पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर कृष्ण तेमनू साचू चतुर्भुज रूप दर्शाव्यू अने छेवटे पोतानू द्विभुज रूप दर्शावी भयत्रस्त अर्जुन ने उत्साहित कर्यो।
यस, तात्पर्य प्रभात कहते हैं कृष्ण अपीयर एज़ द सन ऑफ वसुदेव एंड देवकी। पढ़िए आगे।
कृष्ण जयरे वसुदेव अने देवकी ना पुत्र रूपे त्यारे सौ प्रथम तेओ चतुर्भुज नारायण रूपे प्रकट थया हता, परंतु जयरे तेमना माता पिताए विनंती करी त्यारे तेमने सामान्य बाळक नु रूप धारण करी लीधु। तेज प्रमाणे कृष्ण जाणता हता कि अर्जुन ने चतुर्भुज रूपना दर्शन करावामां कोई रुचि नहोती, परंतु अर्जुने आ चतुर्भुज रूप जोवानी इच्छा करी हती, तेथी कृष्णे तेने फरीथी आ रूप पण बताव्युं हतुं, पण अने पछी तेमणे पोताने द्विभुज स्वरूपे दर्शाव्यो। सौम्य वपु शब्द महत्वपूर्ण छे, एनो अर्थ छे अत्यंत सुंदर रूप से सौथी सुंदर रूप तरीके जाणीतु छे। कृष्ण प्रगट हता त्यारे सौ कोई तेमना रूपथी ज आकर्षाता, अने कृष्ण आ ब्रह्मांडना संचालक होवाथी तेमणे पोताना भक्त अर्जुनना भयने दूर कर्यो अने तेने फरीथी पोतानुं सुंदर रूप दर्शाव्युं। ब्रह्म संहिता 5.32 માં કહ્યું છે, પ્રેમાંજન છુરિત ભક્તિ વિલોચનૈન, જે મનુષ્યની આંખોમાં પ્રેમરૂપી અંજન આંજેલું છે તે કૃષ્ણના સુંદર રૂપનું દર્શન પામી શકે
છે। યસ, સો યહાં પર ભગવાન કે સુંદર સ્વરૂપ શ્યામ સુંદર સ્વરૂપ કા દર્શન કરના અચ્છા હૈ। वो स्वरूप से देखने का श्याम सुंदर इज बेटर, इसलिए प्रभुपाद ने कहा है। यहाँ पर देखो कहा गया, प्रभुपाद कहते हैं कि पुलिस अफसर होता है, उसका बेटा जो होता है वो उसको अपने पिता को नॉर्मल कपड़े में देखने ज्यादा पसंद करता है, वर्दी में देखने ज्यादा पसंद नहीं करता है वो। उसी तरह से भगवान का भक्त होता है वो भगवान के चतुर्भुज स्वरूप को या द्विभुज स्वरूप को देखने में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। तो प्रभात कहते हैं कि विराट रूप को देखने से बेटर है कि श्याम सुंदर स्वरूप जो कृष्ण का है मुरली बजाने वाला, वो स्वरूप ज्यादा लोएबल है, उनको दर्शन करने का प्रयास करना चाहिए। आगे बढ़िए।
जय अर्जुन ने भगवान कृष्ण
ट्रांसलेशन 51 या
जय अर्जुन ने भगवान कृष्ण नु तेमना मूल रूप में दर्शन थयु त्यारे तेने कह्युं, हे जनार्दन, आपनु अत्यंत सुंदर मनुष्य समान रूप नु दर्शन करीने हवे હું સ્વસ્થ ચિત્ત વાળો થયો.
55 તક પડ લો.
ઓકે. અને મારી મૂળ પ્રકૃતિ મેં પુનઃ પ્રાપ્ત કરી છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે કહ્યું, હે અર્જુન, તું અત્યારે મારા જે રૂપને જોઈ રહ્યો છે તેના દર્શન અતિ દુર્લભ છે. દેવો પણ આ અતિ પ્રિય રૂપને દર્શન કરવાનો અવસર સદૈવ શોધતા રહે છે. તો દિવ્ય દ્રષ્ટિથી મારા જે રૂપના દર્શન કરી રહ્યો છે તે માત્ર વિદા ધ્યાનથી કે કઠોર તપ કરવાથી કે દાનથી અથવા પૂજા દ્વારા પણ પામી શકાતું નથી. આ બધા ઉપાયો દ્વારા મનુષ્ય મને મારા મૂળ રૂપમાં જોઈ શકતો નથી. હે અર્જુન, માત્ર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ મને મૂળ રૂપમાં જાણી શકાય છે કે જે રૂપમાં હું તારી સામે ઉભો છું. અને એ જ રીતે મારું પ્રત્યક્ષ દર્શન પણ કરી શકાય છે. કેવળ આ જ રીતે તું મારા વિશેના જ્ઞાનના રહસ્યને પણ પામી શકીશ. હે પ્રિય અર્જુન, સકામ કર્મ તથા માનસિક તર્ક વિતર્કના સંસર્ગ દોષોથી રહિત થઈને જે મારી શુદ્ધ ભક્તિમાં પરાયણ રહે છે, જે મારે માટે જ કર્મ કરે છે, જે મને જ જીવનનું પરમ ધ્યેય માને છે અને જે જીવ માત્ર પ્રતિ મૈત્રીભાવ રાખે છે તે નક્કી મને પામે છે.
અર્જુન ને અર્જુન કી બાત સુની ભગવાન ને. અર્જુન ને કહા કે ઇસકો જબ આપકા યે સ્વરૂપ આપકા હો ગયા ચાર આત્માના તો અબ મેરા મન તો સ્થિર હો ગયા હૈ. તબ ભગવાન ને એસા કહા કે મેરા જો સ્વરૂપ તુમને દેખા યા તુમ દેખ રહે હો, વિશેષ કરકે દો હાથ વાલા જો સ્વરૂપ જો હૈ ઉસકો બહુ મુશ્કેલ હૈ. દેવતા લોકો ભી ઇસકો દેખ નહીં સકતે, બહુ મુશ્કેલ હૈ ઇસકો દેખના. ઓર એક બાત સહી ભી હૈ, ક્યુંકિ અધિકતર દેવતા લોકો ભગવાન કે પાસ જાતે તો ચાર હાથ વાળે કે પાસ જા પાતે, નારાયણ કે પાસ શ્વેત દ્વીપ મે. ચાર હાથ વાળે દો હાથ વાળે કા તો દર્શન મુશ્કેલ હૈ, બહુ મુશ્કેલ હૈ. વો તો ગોલોક વૃંદાવન કા સ્વરૂપ હૈ ના, દો હાથ વાળા સ્વરૂપ તો વૈકુંઠ કા સ્વરૂપ હૈ ચાર હાથ વાળા. તો વહી દર્શન હોતા બ્રહ્માજી કો ભી ચાર હાથ વાળા દર્શન હોતા, દેવતાઓ કો ભી ચાર હાથ વાળા હોતા, શિવજી કો ભી ચાર હાથ વાળા હોતા, નારદજી કો ભી ચાર હાથ વાળા હોતા, કિસી કો દો હાથ વાળા સ્વરૂપ મિલતા હી નહીં. ઇસલિયે અર્જુન જો તુમ દેખ રહે હો યે બહુત હી દુર્લભ સ્વરૂપ હૈ, ઇસકો કોઈ દેખ નહીં સકતા. વેદો કો પઢને સે, તપસ્યા કરને સે, દાન કરને સે, પૂજા કરને સે યે સ્વરૂપ કો તુમ સમજ નહીં સકતે. ઇટ ઇઝ નોટ by their means that one can see me as I am. ye sambhav hi nahi bina ved se nahi tapasya se nahi kahin se bhi nahi. to iska tatparya kya hua yahan par 53 mein jo kaha gaya hai ki na tapasya se na ved se na, to iska arth hai ki adhyay 6 tak jo bhi mark ka bhagwan ne bataya alag alag karma ka marg gyan ka marg અષ્ટાંગ યોગ કા માર્ગ, યે સારે માર્ગ સે તુમ કૃષ્ણ કે દો હાથ વાળે શરીર તક તો કભી પહોંચી નહીં સકતે, ભગવાન કો તુમ સમજી નહીં સકતે ઉસકે માધ્યમ સે. તો ફિર કિસકે માધ્યમ સે સમજ સકતે હો, કિસસે ક્યા ઉપાય હૈ, કોનસી મેથડ હૈ કે જિસકે માધ્યમ સે તુમ ભગવાન કો યથા યોગ રૂપ સમજ સકતે હો. તો ફિર ભગવાન કહેતે હૈ, ભક્ત્યા પુનર્નયા શક્યમ અહમ એવ વિદો અર્જુન. મેં આ તુમ છો પ્રવેશ તુમ છો ક્યાંય, મેં આ તુમ દ્રષ્ટુમ છ તત્વ ને પ્રવેશ તુમ છો પરંતપ હે ના, એસા કુછ લોગ હૈ.
મેં આ તુમ દ્રષ્ટુમ છ તત્વ ને
પ્રવેશ તુમ છો પરંતપ. યસ. તો ભગવાન તો કેવળ અનએડલ્ટરેટેડ શુદ્ધ ભક્તિ કે માધ્યમ સે હી, અવિશુદ્ધ ભક્તિ ભક્તિયા તું અનન્યા શક્ય પૈસા ના,
ભક્તિયા
તું અનન્યા શક્ય. ભક્તિયા કા અર્થ હોતા હૈ ભક્તિ કે માધ્યમ સે કેવલ તું અનન્યા अनन्य भक्ति के माध्यम से ही तुम देख सकते हो। भक्त्या तुम्हें आ सके अहम एव विदो अर्जुन, मुझे इसी भक्ति के माध्यम से ही जान सकते हैं, ना कर्म से नहीं, ज्ञान से नहीं, किसी और तरीका नहीं, यही एकमात्र उपाय है मुझे जानने का, क्या? भक्ति के माध्यम से, अनन्य भक्ति के माध्यम से, तभी तुम समझ सकते हो। तो भी थोड़ा बहुत, पूर्ण रूप से तो कोई जाने नहीं। ज्ञातुम च द्रष्टुम च तत्वेना, आप मेरे गूढ़ रहस्य को तभी समझ पाते हो। प्रविष्टुम च परम तप, तो प्रभुपाद कहते हैं आई लव गॉड टू बिकम वन विथ हिम, दिस इज अल्टरनेशन, मैं भगवान को प्रेम करता हूँ भगवान बनने के लिए, ताकि मैं भगवान बन जाऊं, तो ये एडल्टरेशन। दिस डिवोशनल सर्विस विल नॉट हेल्प यू। त्वनन्ययासक्यम अर्थात अनन्य भक्ति के माध्यम से ही तुम मुझे समझ सकते हो। प्रविष्टुम शब्द का अर्थ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। प्रविष्टुम का अर्थ होता है एंटर इनटू, यू नो, जैसे कोई शहर में प्रवेश करते हो। लेकिन अगर तुम शहर में प्रवेश करते हो, इसका अर्थ होता है कि तुम शहर नहीं बन जाते, आप समझे? अगर मैं अहमदाबाद में गया, अगर आपको फोन किया, मैं कहाँ पर, मैं बड़ौदा आया हूँ, मैं बड़ौदा बन गया, आप बड़ौदा नहीं बने, तुम बड़ौदा शहर में प्रवेश किया है, अर्थात भगवान के विज्ञान को समझने में तुमने प्रवेश किया। लेकिन तुम भगवान नहीं बनोगे, तुम तो केवल उनको समझ पाओगे, किसके माध्यम से? अनन्य भक्ति के माध्यम से। इसलिए फिर भगवान कहते हैं पांच चीजें, 55 नंबर का जो श्लोक है उसमें पांच चीजें बताई है, उसको प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य में लिखा है, उसको भी समराइज के रूप में आपको बताता हूँ। मत भक्त संग वर्जित मत कर्मकृत, कौन सा श्लोक पढ़िए?
मत कर्म मत कर्म मत भक्त संग वर्जित निर्वैरा सर्वभूतेषु यसामानेति पांडव।
हाँ, श्लोक 55।
मत कर्म कुल मत कर्म मत भक्त
तो अगर पांच चीजों को समराइज किया जाए तो भगवान एक पहला कहते हैं मत भक्ता,
मत कर्म
कर। हाँ, तो ऐसे पांच चीजें, तो एक एक करके अगर हम ले, मत भक्त शब्द का अर्थ होता है कि भक्ति शुद्ध होनी चाहिए, पूर्ण रूप से नवदा भक्ति में व्यक्ति को जुड़ना पड़ता है, तभी वो भगवान को समझ सकता है। मत भक्ता, वो नवदा भक्ति के मार्ग से जुड़ेगा, कृष्ण की सेवा ही अपने जीवन का लक्ष्य बनेगा और संसार में और कुछ नहीं चाहिए, तो वो है मत भक्त। फिर कहा गया है संगवर्जित, संगवर्जित का एक अर्थ ये होता है कि ज्ञान और कर्म की इच्छाओं से मुक्त भक्ति ऐसी होनी चाहिए। मैं ये भक्ति कैसी होनी चाहिए तो पांच तरीका बताया। तो एक तो नवदा भक्ति में भगवान एकमात्र आश्रय है, फिर संगवर्जित कर्म और ज्ञान से वो मुक्त होनी चाहिए, और साथ साथ में जो भगवान के ईर्ष्यालु है, द्वेषी है, उन लोगों का संग नहीं करना चाहिए, इस प्रकार के लोगों से हमें दूर रहना चाहिए, संग वर्जित। फिर मत कर्मकृत, मत कर्मकृत का अर्थ होता है उनकी सेवा के लिए अपने आप को प्रस्तुत करना, उसका सारी शक्ति भक्त की सब प्रकार के कर्म के फल का त्याग करते हुए सब केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए सारे कर्म को नियोजित किया जाए, इसको बोलते हैं मत कर्मकृत। मत परम शब्द का अर्थ होता है भगवान को एकमात्र लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाए, ना कि स्वर्ग के सुख या फिर इम्पर्सनल ब्रह्मन, निराकार ब्रह्मन, केवल परम कृष्ण को ही परम माना जाए, वही एकमात्र लक्ष्य है भक्ति का, ऐसा माना जाए। और पांचवा है निर्वैरी, निर्वैर का अर्थ होता है कि भगवान का भक्त जो होता है वो सबके प्रति मित्रता का व्यवहार रखता है और सबको कृष्ण भावना बोध प्रदान करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। ये पांच लक्षण बताए गए भक्ति के, इस प्रकार से भक्ति करने वाला भक्त होता है वो अनन्याशक्यम अहम एव विदो अर्जुन, वो ही मुझे जान सकता है। प्रविष्ट जब परंतप, तो ऐसे पांच प्रकार की भक्ति करने वाला जो है वो वास्तव में मुझे समझ सकता है। सातवें अध्याय में भगवान ने अपना प्रकृति का, अपने परमेश्वर का महिमा बताया और अपनी दो शक्तियों का वर्णन किया था। नौवें अध्याय में भगवान ने फिर से इन सब चीजों को विस्तार से बताया था, अपने जन्म कर्म का भी महिमा बताया था। फिर भगवान ने दसवें अध्याय में अपने अंश का एकांशित जगत, अपने ऐश्वर्य का, विभूतियों का वर्णन किया। सो और यहाँ पर भगवान ने विराट रूप दिखा करके ये भी सिद्ध कर दिया कि अगर कोई अपने आप को भगवान बताना चाहता है तो ये भी आप उसको पूछ सकते हो। यद्यपि चैतन्य महाप्रभु ने विराट रूप दिखाया था श्रीवास ठाकुर को, जिसका जिनका आज अद्वैत आचार्य को दिखाया था श्रीवास ठाकुर के घर पे, श्रीवास ठाकुर का तिरुभाव है, उनके घर पे अद्वैत आचार्य को ये विराट रूप दिखाया था। प्रपद तात्पर्य में समरी करते हैं, अगर आप पढ़ सको। इन समरी द यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ कृष्णा विच इज टेम्पररी मैनिफेस्टेशन एंड द फॉर्म ऑफ टाइम विच डिवोर्स एवरीथिंग एंड इवन द फॉर्म ऑफ विष्णु फोर हैंडेड हैव ऑल बीन एग्जीबिटेड बाय कृष्णा। Thus Krishna is the origin of all this manifestation. It is not that Krishna is manifestation of the original Vishwarupa or Vishnu. Krishna is the origin of all forms. There are hundreds and thousands of Vishnus. But for a devotee, no form of Krishna is important, but the original form, two-handed, Shyam Sundar. In the Brahma Sanhita, it is stated that those who are attached to the Shyam Sundar form of Krishna in love and devotion can see him always within the heart and cannot see anything else. One should understand, therefore, that the purport of this 11th chapter is that the form of Krishna is essential and supreme. Krishna ka jo swarup hai wo sarvottam hai, sarvashrestha hai, do hath wala swarup. यही इस पूरे विश्वरूप के जो चैप्टर है उसका सार है, विराट रूप का यही सार है कि कृष्णा का जो दो हाथ वाला स्वरूप है वही सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। दस दच एंड भक्तिवान पर्पट्स ऑफ चैप्टर 11। सो वी स्टॉप हियर।